भाग तीन, समाजवाद। समाजवाद वास्तव में दर्शन का एक पूरा संसार है। यह धर्म के क्षेत्र में नास्तिकता का, राज्य के क्षेत्र में लोकतंत्रात्मक प्रणाली का, औद्योगिक क्षेत्र में जनवादी समाष्टिवाद का, नैतिकता के क्षेत्र में एक अनंत आशावाद का, आध्यात्मवाद के क्षेत्र में प्रकृतिवादी भौतिकवाद का, तथा पारिवारिक क्षेत्र में गृहस्थ संबंधों तथा वैवाहिक बंधनों की लगभग पूर्ण स्थिरता का सूचक है। हरी बैबिल। समाजवाद, जो कि वर्तमान समय का सबसे अधिक लोकप्रिय शब्द है, का प्रयोग 1740 ईस्वी में रॉबर्ट ओवन के विचारों के प्रचार के कारण स्थापित पत्रिका ओ नाइट ओ ऑपरेटिव में व्यक्तिवादी उदारवादी विचारकों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। उसके बाद 1750 में रॉबर्ट ओवन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदाय ने समाजवाद और समाजवादी शब्दों का प्रयोग किया। तत्पश्चात फ्रांसीसी लेखक रेबाद ने अपनी रचना रिफॉर्मेशन मॉडर्नर में इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इन व्यापक रूप में प्रचलित किया। समाजवाद एक अत्यंत अनिश्चित विचारधारा है। समाजवाद आज के युग की सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा है, और समाजवाद की अत्यधिक लोकप्रियता ने ही बहुत अधिक अनिश्चित का रूप प्रदान किया है। समाजवाद की इस अनिश्चितता के कारण ही प्रोफेसर CEM जोर्ड ने कहा है कि संक्षेप में समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है। समाजवाद की अनिश्चितता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, समाजवाद एक अत्यंत व्यापक तथा अनेक रूपी विचारधारा है जिसने विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाओं में विभिन्न रूप धारण कर लिए हैं। लाभ हानि को परस्पर बांटने की सामान्य बात से लेकर राज्य को अधिकतम कार्य सौंपने की सभी बातें समाजवाद के अंतर्गत आ जाती हैं। डॉक्टर सेडवेल के शब्दों में समाजवाद अत्यंत जटिल, अनेक तरफा और भ्रांतियों से पूर्ण ऐसा प्रश्न है जिसने मानव मस्तिष्क को सबसे अधिक उलझाया है। दूसरा, समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा होने के साथ साथ आर्थिक विचारधारा भी है। समाजवादी दर्शन में आर्थिक और राजनीतिक तत्व इस प्रकार गुथे हुए हैं कि इस विचारधारा का स्पष्टतापूर्वक अध्ययन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। कुछ के द्वारा इसकी विवेचना आर्थिक दृष्टि से की गई है और कुछ के द्वारा राजनीतिक दृष्टि से, और इसी कारण प्रोफेसर बाकर इसे एक ऐसा सिद्धांत मानते हैं जो अपने लक्ष्य और उद्देश्यों में बहुत अधिक अनिश्चित और भ्रामक है। तीसरा, समाजवादी विचारधारा इतनी अधिक धाराएं एवं उपधाराएं निकल चुकी हैं और निकलती जा रही हैं कि इसका एक निश्चित रूप निर्धारित करना लगभग असंभव है। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न समाजवादी उपधाराएं अपने उद्देश्यों और प्रणालियों में एक दूसरे से इतनी भिन्न हैं कि इनके आधार पर समाजवाद को समझना एक विफल प्रयत्न बनकर रह जाता है। इस स्थिति को एक लेखक ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि समाजवाद उस बहुसिर वाले जंतु की तरह है जिसका जितनी देर में एक सिर भी नहीं नष्ट पाता, उतनी ही देर में एक नया सिर उसके स्थान पर निकल जाता है। चौथा, समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा और दर्शन की ही नहीं वरन एक आंदोलन भी है। इस आंदोलन की भी कोई एक निश्चित दिशा होने के स्थान पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में यह विविध रूपों में है। कहीं पर यह शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में है तो कहीं पर हिंसक आंदोलन के रूप में, कहीं पर यह प्रजातांत्रिक पद्धति के रूप में संचालित होता है तो कहीं पर यह क्रांतिकारी प्रक्रिया में रूप में, एक ही देश में भी अनेक प्रकार के समाजवादी विचार और आंदोलन देखे जा सकते हैं। भारत इसका उदाहरण है। पांचवा, समाजवाद एक गतिशील और परिवर्तनशील दर्शन तथा कार्यक्रम है जिसका स्वाभाविक गुण बदलती हुई आर्थिक तथा राजनीतिक आवश्यकताओं के साथ साथ अपने स्वरूप में परिवर्तन करना है। समाज के इस परिवर्तनशील वातावरण में समाजवाद के संबंध में आज निश्चित की गई धारणा कल अनुपयुक्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में अनिश्चितता समाजवाद का एक स्वाभाविक लक्षण हो गया है। वस्तुतः समाजवाद एक क्रियात्मक तथा व्यवहारिक दर्शन होने के कारण कोई बनी बनाई योजना तथा निश्चित पद्धति नहीं हो सकती। समाजवाद के इस निरंतर परिवर्तनशील स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए रैमजे मेयर ने कहा था, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा धर्म है। बाजार के एक कोने पर अथवा क्लब में भीड़ जमा करके व्याख्यान देने वाले व्यक्ति इसे वर्ग संघर्ष के भड़कीले लाल रंग में प्रस्तुत करता है। बुद्धिजीवियों के लिए यह अत्यधिक उत्तम पीले रंग वाले लोहे के समान है। भावुक व्यक्तियों के लिए यह कोमल गुलाबी फूल की भांति है तथा पादरी वर्ग में यह सफेद वस्त्रधारी और उदारवादी आकांक्षाओं की प्रेरक बन जाता है। छठवां, समाजवाद के संबंध में अनिश्चितता का एक अन्य कारण यह है कि व्यवहार में एक बड़े वर्ग द्वारा समाजवाद और साम्यवाद को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि वस्तुतः इन दोनों में बहुत अधिक अंतर है। समाजवाद की इस अनिश्चितता को रॉबर्ट पोर्ट ने सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। वे लिखते हैं, यदि मुझसे पूछा जाए कि क्या मैं समाजवादी हूँ, तो मैं यह स्पष्ट रूप से उत्तर दूंगा कि मुझे मालूम नहीं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति समाजवाद से क्या समझता है। समाजवाद की परिभाषा। समाजवाद आंग्ल भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है समाज। इस प्रकार समाज का संबंध समाज और उसके सुधार से है, लेकिन वर्तमान समय में यह सीधा साधा शब्द समाजवाद इतना अधिक लोकप्रिय और प्रचलित हो गया है कि इसे विभिन्न ढंग से परिभाषित किया गया है। डॉन ग्रिफिथ्स ने अपनी रचना समाजवाद क्या है में समाजवाद की लगभग 363 परिभाषाएं संग्रहित की थीं। प्रोफेसर एली ने अपनी एक पुस्तक में समाजवाद के 500 से अधिक परिभाषाओं का संकलन किया है। सन 1770 में पेरिस में एक पत्र ली फिगारो ने विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न समयों पर दी गई समाजवाद की लगभग 600 परिभाषाएं दी थीं। ऐसी स्थिति में यह सुगमतापूर्ण कहा जा सकता है कि समाजवाद की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने की समाजवादी। कुछ प्रमुख विचारकों द्वारा समाजवाद की परिभाषाएं इस प्रकार दी गई हैं। बेल्जियन समाजवादी इस्माइल के शब्दों में समाजवाद का अर्थ है कि श्रमिकों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति के बदलने के उद्देश्य से राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करेगी। कोकर के मतानुसार समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण से है। यह नियंत्रण समाजवाद के किसी एक वर्ग द्वारा न होकर स्वयं समाजवाद के द्वारा होगा और धीरे धीरे व्यवस्थाहीन ढंग से स्थापित किया जाएगा। हुगन के अनुसार समाजवाद श्रमिक वर्ग द्वारा की जाने वाली एक ऐसी राजनीतिक क्रांति है जिसका उद्देश्य उत्पादन तथा वितरण के साधनों की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था तथा सामूहिक स्वामित्व द्वारा शोषण का उन्मूलन करना है। सेलर्स के अनुसार समाजवाद एक ऐसी प्रजातंत्रात्मक विचारधारा है जिसका उद्देश्य समाज में एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था लाना है जो किसी भी समय व्यक्ति को अधिकतम संभव न्याय और स्वाधीनता प्रदान कर सके। रैमजे मैकडोनाल्ड के अनुसार साधारण रूप से समाजवाद की इसमें अधिक अच्छी परिभाषा नहीं दी जा सकती कि वह समाज की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण हो। उपरोक्त विद्वानों की तुलना में भारत के समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की परिभाषा अधिक स्पष्ट है। उनके शब्दों में समाजवादी समाज की एक ऐसी वर्गहीन समाज होती है जिसमें सब श्रमजीवी होंगे। इस समाज में व्यक्तित्व संपत्ति के हित के लिए मनुष्य के श्रम का शोषण नहीं होगा। इस समाज की सारी संपत्ति सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय अथवा सार्वजनिक संपत्ति होगी तथा अनार्जित आय और आय संबंधों में भीषण असमानताएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। ऐसे समाज में मानव जीवन तथा उसकी प्रगति योजनाबद्ध होगी और सब लोग उसके हित लिए जिएंगे। उपरोक्त परिभाषाओं के शब्दों में पर्याप्त भेद है। इनमें से किसी परिभाषा में समाजवाद का एक आंदोलन, किसी में इसे आर्थिक प्रणाली तथा किसी में दर्शन माना गया है। इन परिभाषाओं में इतनी विभिन्नता होते हुए भी यह स्पष्ट है कि समाजवाद पूंजीवाद का घोर विरोधी है और यह पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त कर उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, जिससे आर्थिक असमानता का अंत होकर सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सकें।